At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny My Perks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with My Perks. Find your My Perksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
Hey there, you're listening to The Quint.
आज पॉडकास्ट की शुरुआत में आपको कुछ कोट्स, कुछ लाइंस पढ़कर सुनाऊंगी और फिर आप याद करने की कोशिश कीजिएगा कि आपने वो कहां पढ़ी हैं। नंबर वन, तमाम जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। नंबर टू, वाहिद अच्छा इंसान वो है जो मर चुका है। नंबर तीन, इंसान अपने सिवा किसी मखलूक के फायदे के लिए कुछ नहीं करता है। और आखिर में, अगर आजादी का मतलब कुछ है तो वो लोगों को वो बताना है जो वो सुनना ही नहीं चाहते। ये लास्ट वाला अंग्रेजी में भी पढ़ देती हूँ। इफ लिबर्टी मीन्स एनीथिंग एट ऑल, इट मीन्स द राइट टू टेल पीपल व्हाट दे डू नॉट वांट टू हियर। जानी पहचानी बातें हैं ना। टेक अ मिनट टू थिंक, आई विल टेल यू द आंसर सून। द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा, मैं हूँ फबीहा सैयद। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि लाइंस कहाँ से आई हैं। दे आर फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल्स नॉवल एनिमल फार्म। उर्दू नामा में हम अमूमन वर्ड्स पे गौर करते हैं, थीम्स पे गौर करते हैं, पोएट्री की बातें करते हैं, पर आज इस एपिसोड में कुछ हटके करेंगे। आई एम गेसिंग मेनी ऑफ आवर लिसनर्स हैव डेफिनेटली रेड इंग्लिश राइटर, जर्नलिस्ट एंड एसेइस्ट जॉर्ज ऑरवेल्स वर्क्स, स्पेशली उनका नॉवल एनिमल फार्म। लेकिन आप में से कितने लोगों ने एनिमल फार्म उर्दू में पढ़ा है? सी, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले उर्दू की इसकी एक कॉपी मेरे हाथ लगी है और उसे मैं पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज उर्दू नामा में जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म की ही हम बात करने वाले हैं। पहले ये सवाल है, और बहुत ज़रूरी सवाल है, कि जॉर्ज ऑरवेल को हम क्यों याद कर रहे हैं? वाई इज़ हिज वर्क ऑफ सो मच रेलिवेंस एंड वाई शुड वी सेलिब्रेट हिम? ज़रूरी सवाल है ये। जॉर्ज ऑरवेल 25 जून 1903 में बिहार के मोतीहारी में पैदा हुए थे। पैदाइश पे उनका नाम रखा गया था एरिक आर्थर ब्लेयर। उनके वालिद इंडियन सिविल सर्विसेज में एक कम दर्जे के ब्रिटिश मुलाजिम थे। जब ऑरवेल अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लैंड आए तो 1911 में उनका ससेक्स के एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराया गया, और जब वो और बड़े हुए तो उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलती गईं, और ईटन कॉलेज नाम के एक स्कूल में, जो कि इंग्लैंड में है एंड इट्स वेरी फेमस, और बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, प्रिंस हैरी, प्रिंस विलियम और भी इंग्लैंड की रॉयल फैमिली के मेल मेंबर्स नोटेबल एलुमनाई हैं इस स्कूल के। ये स्कूल सिर्फ बॉयज़ के लिए है। खैर, ईटन कॉलेज से पढ़ाई ख़त्म करके ऑरवेल बर्मा चले गए, जहाँ उन्हें इंडियन इम्पीरियल पुलिस में नौकरी मिल गई। बर्मा में ऑरवेल का जो एक्सपीरियंस रहा बतौर एक कलोनियल पुलिस अफसर, उसकी दास्तान उन्होंने अपनी किताब बर्मीज डेज में लिखी थी। एंड दिस बुक वॉज हिज फर्स्ट नॉवल, और ये किताब लिखी थी 1934 में। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, दैट वाई शुड वी रीड ऑरवेल? भाई, वो ब्रिटिश राइटर हैं, हम उनको इंडिया में बैठ के क्यों हमें पढ़ना चाहिए? वेल, जॉर्ज ऑरवेल इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि वो एंटी इम्पीरियलिस्ट राइटर थे। उनकी दो किताबें पॉलिटिकल फेबल्स हैं, जो एक तल्ख कमेंट्री हैं टोटलिटेरियन पॉलिटिक्स के ख़तरों पर, कि जब कोई गवर्नमेंट पूरी तरह से हावी हो जाती है अपने ही लोगों पर तो क्या मंजर होता है, सिस्टम किस तरह से करप्ट हो जाता है। 1984 जो किताब है वो 1949 में लिखी थी, और एनिमल फार्म जिसकी हम आज इस एपिसोड में बात करेंगे वो किताब लिखी थी 1945 में। आज ऑरवेल की लिटरेरी लेगेसी को हम उर्दू नामा में सेलिब्रेट करेंगे। एनिमल फार्म का शुरुआती हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ने वाली हूँ, लेकिन इस नॉवल में जो ज़रूरी थीम्स हैं पहले उसकी समरी आपको दे देती हूँ, ताकि जब मैं उनकी किताब का उर्दू तर्जुमा पढ़ूँ, जब उसका वो छोटा सा हिस्सा पढ़ूँ, शुरुआती हिस्सा, तो आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो इस किताब में क्या होता है कि एक मिस्टर जोन्स होते हैं जिनका अपना फार्म होता है। एक रात मिस्टर जोन्स के मैनर फार्म के तमाम जानवर बूढ़े मेजर जो एक सुअर होता है, एक पिग होता है, उसको सुनने के लिए गोदाम में जमा होते हैं। अब जो ये बूढ़ा मेजर है वो अपना एक ख्वाब बयान करता है जो उसने दुनिया के बारे में देखा है, जहां तमाम जानवर अपने ह्यूमन मास्टर्स के जुल्म से आज़ाद रहते हैं। मीटिंग के फौरन बाद बूढ़े मेजर का इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है, लेकिन बाकी जानवर उसकी एनिमलिज्म की जो फिलॉसफी है उससे काफ़ी इंस्पायर हो जाते हैं और फिर मिस्टर जोन्स के खिलाफ बगावत की साजिश करते हैं। दो सुअर स्नोबॉल और नेपोलियन खुद को इस खतरनाक इदारे के अहम शख्सियात और मंसूबा साज साबित करने में लग जाते हैं। जब जोन्स जानवरों को खाना खिलाना भूल जाता है तब इनकलाब आता है और जोन्स और उसके आदमियों को खेत से भगा दिया जाता है। सारे जानवर मिलकर जोन्स को और उसके आदमियों को खेत से भगा देते हैं। उसके बाद मैनर फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म रख दिया जाता है और गोदाम की दीवार पर जानवरों के 7 कमांडमेंट्स पेंट कर दिए जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि जो बगावत होती है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहती है। जानवर फसल की जो कटाई होती है उसे पूरा करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद फार्म पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं। हर इतवार को इसके लिए मिला जाता है। सुअर यानी पिग्स अपनी जहानत की वजह से फार्म के निगरान यानी सुपरवाइजर्स बन जाते हैं। नेपोलियन जो होता है वो एक पावर हंग्री सुअर साबित होता है जो अपने कौम के बाकी पिग्स का पेट भरने के लिए गाय का दूध और कई सारे सेब चुराता है। इसके अलावा वो एक दूसरे पिग स्क्वेलर को भी इस्तेमाल करता है, यानी वो उसे भी काम पर रखता है, क्योंकि स्क्वेलर बड़ा ही परसुएसिव सुअर होता है जो तमाम दूसरे जानवरों को इस बात पर कायल करता है कि भाई जो सुअरों की कौम है, जो पिग कम्युनिटी है, वो हमेशा मॉरल ग्राउंड्स पे खरी उतरती है और अपने फैसलों में हमेशा बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। नॉवल में आगे दिखाया गया है कि नेपोलियन किस तरह स्नोबॉल का फायदा उठाता है, यहाँ तक कि उस पर अटैक भी वो करवाता है। यानी पूरी पूरी पॉलिटिक्स चल रही है इस किताब के अंदर। अच्छा, इस नॉवल का मेजर थीम जो है वो है करप्शन, अब्यूज ऑफ पावर। और इस नॉवल में एक और थीम है जिसे पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है और जिसे जब आप खुद नॉवल पढ़ेंगे तब समझ ही जाएंगे कि इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह ऑपरेशन की हालात ना सिर्फ जालिमों के मंसूबे और टैक्टिक्स से पैदा होते हैं बल्कि जो ऑप्रेस्ड होते हैं, जिन पर जुल्म किया जाता है, जो मजलूम होता है, उनकी मासूमियत या यूं कहें गलबिलिटी से भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। ये पूरा पार स्ट्रगल है। ये किताब पढ़ के आपको इस बात की भी समझ आ जाएगी और के जिसे ऑप्रेस किया जाता है ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा तालीम याफ्ता हूँ, बेहतर तालीम याफ्ता हूँ, या फिर वो ऐसी पोजीशन में हो जहां उन्हें सिस्टम की जानकारी हो, बेसिक अवेयरनेस हो। तो जो ज्यादातर ऑप्रेस्ड लोग होते हैं उनको इस बात की भी समझ नहीं होती है कि वो ऑप्रेशन के शिकार हैं इस वक्त, और इसी सब की वजह से जो पावर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दे ओनली इंटेंसिफाई, दे डीपन। अब आपके लिए इस नॉवल का उर्दू तर्जुमा मैं पढ़ रही हूँ जिसे किया है लंदन बेस्ड राइटर नासिर हुसैन जाफरी ने। एनिमल फार्म का उर्दू में उनवान है जानवरिस्तान। तो शुरू करते हैं। मिस्टर जोन्स ने हज़्ब मामूल शाम के वक्त अपनी मुर्गियों को दड़बे में बंद किया और लालटेन की मध्यम सी रोशनी में दरवाजे को खोलकर घर में चला गया। वहां जाकर उसने रेफ्रिजरेटर से शराब का एक जाम भरा और पलंग पर बैठ गया जहां उसकी बीवी पहले ही से महवे ख्वाब थी। मिस्टर जोन्स ने अपना जाम खत्म किया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मिस्टर जोन्स की आरामगाह की रोशनी गुल हुई, पूरे फार्म में तहलका समझ गया। हर तरफ से सरसराहट और फड़फड़ाहट की दबी दबी सी आवाज आने लगी। दिन में पहले ही सारे जानवरों को इत्तला दे दी गई थी कि बूढ़े सफेद सुअर मेजर ने एक ख्वाब देखा है जो वो सारे जानवरों को आज सुनाना चाहता है। इसीलिए तारीख शाम से फायदा उठाते हुए सब जानवर मैदान में जमा होना शुरू हो गए। पहले 3 कुत्ते आए जिनका नाम ब्लूबेल, जेसी एंड पिचर। उनके बाद सुअर आए और वो सब प्लेटफॉर्म के सामने ही बैठ गए और भेड़ें भी उनके पीछे बैठकर जुगाली करने लगीं। मिस्टर जोन्स की गाड़ी के दोनों घोड़े बॉक्सर और क्लवर साथ साथ आए। उनके बाद म्यूरियल, काली बकरी, वो भी आई। फिर बेंजामिन सफेद गधा, वो भी आया। ये कभी हंसता नहीं था और अगर कोई पूछता था तो कहता था कि हंसने की कोई बात ही नहीं है जिस पर हंसा जाए। सबसे आखिर में मॉली, वो खूबसूरत सब्जा घोड़ी जो मिस्टर जोन्स का तांगा खींचती आई थी और गले में पीतल की घंटियां और बड़े बड़े रंगीन मोतियों की माला लटक रही थी। फिर बिल्ली भी आ गई जो बॉक्सर और क्लवर के पैरों के दरमियान एक नर्म गोशा तलाश करके बैठकर खर खर करने लगी। सिवाय मूसा कौवे के सब जमा हो चुके थे और हम तनगोश थे कि बूढ़े मेजर ने अपना गला साफ किया और बोला, तुम सबको ये मालूम हो गया है कि मैंने कल रात एक अजीब ख्वाब देखा है और कबल उसके मैं तुम्हें ये ख्वाब सुनाऊं ये बता देना चाहता हूं कि मैं अब ज्यादा दिन तुम्हारे साथ ना रहूंगा। इसलिए मरने से पहले मैं अपना फर्ज समझता हूं कि इल्म व अक्ल की बातें और वो तजर्बे जो मैंने अपनी तवील उम्र में हासिल किए हैं आज तुम्हें बता दूं। तुम जानते हो कि हमारी जिंदगी की असल हकीकत क्या है? इस अम्र से कौन इनकार कर सकता है कि हमारी जिंदगियां बेहद तकलीफ दे, मेहनत और मशक्कत से भरी हुई हैं, दुश्वार और बहुत मुख्तसर होती हैं। हम पैदा होते हैं और हमें बस इतनी ही खुराक दी जाती है कि हम बस जिंदा रहें। सारी उम्र हमसे मेहनत ली जाती है और जो ही हमारी इफादियात कम हो जाती है निहायत ही बहमियाना तरीके से हमको ठिकाने लगा दिया जाता है। कोई एक जानवर भी पूरी दुनिया में आराम और सुकून और मसरत के साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकता। जैसे ही वो एक साल की उम्र को पहुंचता है काम में जोत दिया जाता है। कौन जानवर आजाद है? बिलखुसूस बूढ़े जानवरों की तो जिंदगी अजीरन है, एक वबाल है और एक गुलाम के जैसे हैं। मेरे कहने की बात नहीं बल्कि ये तो वो हकीकत है जो दुनिया जानती है। क्या पूरी कायनात में यही निजाम कुदरत राइज है या सिर्फ हम हैवानों पर ही ये जुल्म है और हम ही इस कदर मुसीबत ज़दा महकूम और मजलूम हैं? ऐसी तो रज़ाए रब्बुल आलमीन नहीं हो सकती। मेरे साथियों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क की सरजमीन तो बहुत ही जरखेज़ है, इसकी आबो हवा निहायत ही खुशगवार है और ये मुल्क ऐसा है कि जिसमें बेशुमार जानवरों के लिए खुराक पैदा हो सकती है। सिर्फ हमारा एक फार्म ही एक दर्जन घोड़ों, 50 गायों और सैकड़ों भेड़ बकरियों की किफालत के लिए काफ़ी हो सकता है। तो हमको ये तकलीफ दे जिंदगी क्यों गुजारनी पड़ रही है? जरा सोचो और समझो मेरे दोस्तों। तुम जानते हो कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो तमाम पैदावार जो हमारी मेहनत से हासिल होती है ये आदमी चुरा कर ले जाता है। ऐ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अब सुनो और बड़े गौर से सुनो। हमारी सारी मुसीबतों का एक ही इलाज है, हमारी तमाम मुश्किलात का सिर्फ एक ही हल है और वो है आदमी से निजात। आदमी ही हमारा वो दुश्मन है। तुम आज आदमी को सफाए हस्ती से मिटा दो, तुम्हारी भूख का इलाज हो जाएगा। आदमी को आज ही ख़त्म कर दो, तुम हमेशा के लिए मुसीबतों से छुटकारा पालोगे। सिर्फ आदमी ही वो हस्ती है जो बग़ैर कोई काम किए और बग़ैर कुछ पैदा किए खाता पीता और ऐश करता है। वो दूध नहीं देता, अंडे नहीं देता, वो इतना कमज़ोर है कि खुद हल भी नहीं चला सकता, गाड़ी भी नहीं खींच सकता, वो इतना तेज़ भी नहीं दौड़ सकता कि खरगोश तक को पकड़ ले। उस पर भी वो तमाम जानवरों का मालिक बना बैठा है और हम सबको अलग अलग काम पर लगाता है और सिर्फ ज़रूरत भर का ही खाना देता है, इतना कि फाके से हम मर ना जाएं। बाकी वो खुद अपने पास रख लेता है। हमारा गोबर उनके खेतों के लिए खाद मुहैया करता है और हम अपनी मोहब्बत और मशक्क़त से खेतों को जोतते हैं, इस पर भी हम खाल और हड्डी हो रहे हैं। ऐ गायों, तुमने साल भर में कितने 100 मन दूध दिया होगा? बताओ कि ये सब दूध कहाँ गया? ये तो तुम्हारे नौनिहालों को खिलाने के लिए था, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि वो सब तुम्हारे दुश्मनों के हलक में उतर गया? ऐ मुर्गियों, तुमने साल भर में कितने 1000 अंडे दिए होंगे? उनमें से तुमने कितने बच्चे निकाले? वो अंडे भी इस आदमी ने बाजार में बेच दिए और रकम भी खुद रख ली। ऐ क्लवर, वो तुम्हारे खूबसूरत चारों बछड़े कहाँ हैं? वो जो तुम्हारे दिल की ठंडक और आंखों का सहारा थे, वो सब एक साल की उम्र होते ही फरोख्त कर दिए गए और अब तुम उन्हें जिंदगी में कभी ना देख सकोगे। ये आदमी हमें हमारी ये बदबख्त जिंदगी भी पूरी नहीं होने देता। मुझे खुद कोई गिला या शिकवा नहीं क्योंकि मैं उन खुश नसीब जानवरों में से हूँ जिन्होंने उम्र के 12 साल पूरे कर लिए हैं। मेरी औलाद 400 से तिजावस कर चुकी है, बस यही एक सुअर की फितरी जिंदगी होती है जो मुझे पूरी पूरी हासिल हुई। लेकिन आम तौर पर यहाँ जानवरों का अंजाम छुरी तले ही होता है। ए बॉक्सर, जब तुम्हारे अजालात ढीले पड़ जाएंगे और तुम्हारी ये तवानाई खत्म हो जाएगी तो जोन्स तुम्हें कसाब के हाथ बेच देगा जो तुम्हारे गोश्त को, तुम्हारी खाल को और तुम्हारी हड्डियों तक को फरोख्त कर देगा। ऐ भेड़ों, बकरियों और गायों, जैसे भी तुम फरबा होगी और तुम्हारे बदन पर गोश्त चढ़ेगा तुम सब कसाई के हवाले कर दी जाओगी। ऐ नौजवानों जो आज मेरे सामने बैठे हो, गौर से सुनो, जरा सोचो कि एक साल के अंदर ही तुम जुए के बोझ से चीख मारने लगोगे। और ऐ कुत्तों सुनो, तुम जब बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे दांत गिर जाएंगे और तुम दौड़ ना सकोगे, तो जोन्स तुम्हारे गले में पत्थर बांधकर डुबो देगा। ऐ मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, क्या ये रोज़े रोशन की तरह आया नहीं है कि हमारी जिंदगी तमाम तलखियां और दुनिया की सारी बुराइयां सिर्फ आदमी ही के खुद गर्जी, अनायत और उसकी अमरियत से पैदा होती है? बस आदमी को नापैद कर दो, तुम शब भर में आजाद हो जाओगे। हमारी मेहनत की कमाई सिर्फ हमारी रहेगी, हम मालदार और खुशहाल हो जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए ये मैं बताता हूँ, सुनो। हमें चाहिए कि हम दिन रात जानो दिल खपाकर आदमी की नस्ल को फना करने में लग जाएं। मेरे दोस्तों और साथियों, आज यही एक पैगाम है मेरा तुम्हारे लिए, बस इनकलाब। मुझे नहीं मालूम ये इनकलाब कब आएगा, कल, एक हफ्ते में, एक साल में, 100 साल में, मुझे इसका पूरा यकीन है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये सब्ज घास मेरे पैरों तले है कि ये इनकलाब आएगा ज़रूर। तुम्हारा फ़र्ज अब ये है कि अपनी बाकी मानदा जिंदगी की तमाम तर तवज्जा तुम सिर्फ इस पर ही मरकूज कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरा ये पैगाम तुम उन तक ज़रूर पहुँचा देना जो तुम्हारे बाद आएंगे, ताकि आने वाली नस्लें ये जद्दोजहद जारी रखें और खुदा करे वो कामयाबी से हमकिनार हों। ऐ मेरे अजीजों, देखो तुम्हारा ये जज्बा कभी हल्का ना पड़ने पाए, किसी की बात या बहस तुम्हें गुमराह ना कर पाए, और अगर कोई ये कहे कि आदमी और जानवर का नज़्बुलैन तो एक ही है तो उसकी बात हरगिज़ ना सुनना। ये कहना कि जानवरों की खुशहाली आदमियों की खुशहाली से वाबस्ता है, महज एक फरेब है, धोखा और झूठ है। आदमी सिवाय अपने किसी और के हालात से कोई दिलचस्पी नहीं रखता। आज से हम सब जानवरों में मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती के मुजाहरा होना चाहिए। सारे आदमी हमारे दुश्मन और तमाम जानवर हमारे दोस्त हैं। दो पैर रखने वाला हमारा दुश्मन और जिसके चार पैर हैं वही हमारा दोस्त है। ये भी याद रखना कि कभी आदमी की नकल ना करना, उस जैसी अपनी शक्ल ना बनाना, और जब भी तुम इस पर फतेह पालो तो उसके गुनाहों को ना अपनाना। शराब कभी ना पीना, तंबाकू को भी ना पीना, ना खाना, कपड़े ना पहनना और ना कभी पलंग पर सोना, न मकानों में उनकी तरह रहना, ना पैसे को हाथ लगाना, ना किसी तिजारत या कारोबार में मुलव्वस होना। देखो आदमी की ये तमाम हरकतें गुनाह कबीरा हैं। और हाँ, याद रखना, मेजर ने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जानवर किसी जानवर पर कभी जबर ना करे। कमजोर और ताकतवर, अकलमंद और बेवकूफ, चालाक और गौदी, सब जानवर भाई भाई हैं। हम सब जानवर एक कौम हैं। इतना कहने के बाद बूढ़े मेजर ने कहा, लो अब ख्वाब सुनो जो मैंने कल रात देखा था। अब यहाँ वो ख्वाब सुनाता है कि कैसे उसके ख्वाब में एक ऐसी दुनिया थी जिसमें सभी जानवर आज़ादी से रहते हैं। पूरी किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, हर ज़बान में आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। ये पॉडकास्ट बस एक रिमाइंडर के तौर पे था। अब जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि उर्दू नामा में पहले भी अंग्रेज़ी ज़बान में लिखे गए कई सारे टेक्स्ट्स और उनके राइटर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर जो मुमकिन लफ्ज़ पे मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था जिसमें थीम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हमने एक्सप्लोर किए, तो उसे समझाने के लिए मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त और स्कॉलर माज़ बिन बिलाल ने एमिली डिकिंसन की पोम आई ड्वेल इन पॉसिबिलिटी का उर्दू तर्जुमा किया था। मैं इमकान में रहती हूँ, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्ट्स। आप ज़रूर सुनिएगा, अगर नहीं सुना है तो गूगल पॉडकास्ट्स, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर उर्दू नामा की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो क्विंट की वेबसाइट तो है ही, उर्दू नामा टाइप करेंगे, अगले पिछले सारे एपिसोड आ जाएंगे। एंड अगैन, जॉर्ज ऑरवेल ज़रूर पढ़िएगा, उनकी कोई भी एक किताब हाथ लग जाए उसे पानी में घोल के निगल लीजिए, सबको पढ़नी चाहिए। अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ, खुदा हाफिज़।